बीबीसी इंडिया बोल तारीख 5 जनवरी दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। क्या सरकारी मीडिया में मन की बात कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी सवाल पूछने वाले मीडिया से कतराते हैं? नरेंद्र मोदी ने बीते 4.5 वर्ष में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। विपक्ष इसे प्रधानमंत्री मोदी की कमजोरी बताता है। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये रवैया सही है? नए साल के पहले बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा होगी आज इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एच के दुआ, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो संसद की मंजूरी के बिना मेक्सिको सीमा पर दीवार खड़ी करने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। वरिष्ठ डेमोक्रेट सांसदों से मुलाकात के बाद ट्रंप ने ये धमकी दी है। डेमोक्रेट सांसदों से मेक्सिको सीमा पर दीवार खड़ी करने के लिए फंड को मंजूरी देने की ट्रंप ने गुजारिश की थी। ट्रंप के इस कदम को सरकार को दीवार बनाने के लिए जरूरी धन जारी करने के लिए विपक्ष पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप ने ये भी कहा कि सरकार का आंशिक कामकाज बंद करने के लिए वो तैयार हैं। अमरीका में कामबंदी का दौर फिलहाल तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,
Absolutely, we can call a national emergency because of the security of our country. Absolutely. No, we can do
बिल्कुल हम अपने देश की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। नहीं, हम ये कर सकते हैं। मैंने ये किया नहीं है, पर मैं ये कर सकता हूँ। पर अगर कोई और रास्ता है और हम बातचीत करके इसका हल निकाल सकते हैं तो हम उसकी कोशिश ज़रूर करेंगे। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इन वेंग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो चीन के खतरे के खिलाफ उनका समर्थन करे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मदद नहीं की गई तो चीन बाकी देशों को भी धमकी देने से नहीं हिचकेगा। उनकी अपील चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उस बयान के कुछ दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास बल प्रयोग से ताइवान को वापस चीन में मिलाने का अधिकार है। ताइवान में बीते 70 साल से स्वतंत्र शासन व्यवस्था है, लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा मानता है। एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में यूक्रेन का ऑर्थोडॉक्स चर्च अब रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च से अलग हो गया है। इस्तांबुल में सेंट जॉर्ज कैथेड्रल में एक समारोह के दौरान अलग होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको इस बैठक में शामिल थे। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च से अलग होने की इस घटना पर दुनिया भर के ऑर्थोडॉक्स समुदाय की राय बटी हुई है। रूस में इस पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ा दिन है। इसमें योगदान करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर यूक्रेन के लोगों और राष्ट्र की ओर से योर होलीनेस का बहुत शुक्रिया। अब ऑर्थोडॉक्स चर्चों में 15 स्वाधीन सितारों में एक यूक्रेन का सितारा भी चमक रहा है। ये थे यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस ने कहा है कि अमेरिका ने उसके एक नागरिक को हिरासत में ले लिया है। करीब हफ्ते भर पहले रूस ने पूर्व अमेरिकी नौसैनिक पॉल वेलन को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। उनका परिवार उनके निर्दोष होने का दावा करता है। अब रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूसी नागरिक दिमित्री माकरेंको को हफ्ते भर पहले FBI ने नॉर्थ मरियाना आइलैंड्स पर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फ्लोरिडा ले जाया गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि रूस अमेरिका में हिरासत में लिए गए रूसी नागरिकों को छुड़ाने के लिए पॉल वेलन को रिहा कर सकता है। हालांकि रूस के उप विदेश मंत्री ने ऐसी संभावना से इनकार किया है। एक चीनी शोध संस्थान ने कहा है कि आने वाले 8 साल में देश की जनसंख्या में काफ़ी कमी आ सकती है। हालांकि एक स्वतंत्र शोधकर्ता का दावा है कि चीन मील का ये पत्थर पहले ही हासिल कर चुका है। बीबीसी समाचार।
ने नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स 1811-7000 और 1811-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एच के दुआ, स्वागत है आपका और स्वागत दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। अगले 3-4 महीनों में यही रुझान जारी रहा तो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और कीर्तिमान दर्ज होने वाला है रिकॉर्ड। वो ये, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 4.5 वर्षों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये बात अलग है कि उन्होंने कुछ चुनिंदा पत्रकारों को साक्षात्कार दिया, वो हर महीने सरकारी रेडियो पर अपने मन की बात भी कहते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना, पत्रकारों के सवालों से बचना, विपक्ष इसे प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी कमजोरी मानता है। भारत में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो। वरिष्ठ पत्रकार एच के दुआ इसके गवाह हैं, जिन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद आज तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं मोदी जी को छोड़कर सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की हैं। दुआ साहब, कितना मायने रखता है एक प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ना करना, मीडिया से आमने सामने रूबरू होना ना होना?
देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना ये डेमोक्रेसी से भागना है। आप मेजॉरिटी लेके आए हैं, वो इसलिए कि जो सवाल लोगों ने पूछने हैं वो प्रेस के थ्रू पूछे जाते हैं, और आपकी मेजॉरिटी आई है, जवाबदेही है, लोगों ने आपके लिए वोट किया है, और उनके जो कई सवाल हैं जो मीडिया पूछता है, मीडिया एक रास्ता है सवाल पूछने का, आप उन सवालों का जवाब नहीं देते। जो मन की बात है बहुत रेगुलर है उसमें, और लंबी भी है, लेकिन वो एक तरफा है, उसमें से जो सवाल होंगे उनका भी जवाब नहीं मिलता। सो एक तरफा कन्वर्सेशन है, वो बातचीत नहीं है, वो बात है, मन की बात है। तो मन की तो है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का मैसेज जा रहा है, लोगों का मैसेज उनके पास नहीं पहुंच रहा।
वरिष्ठ पत्रकार एच के दुआ के साथ हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और हम कार्यक्रम में पहले श्रोता को शामिल करते हैं। शीशे के उस पार बैठकर स्टूडियो की कमान संभाल रहे हैं कपिल देव सिंह। कपिल इशारा कर रहे हैं, पहले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आज कौन है हमारे साथ सबसे पहले?
हेलो
जी, कौन बोल रहे हैं?
मैं फरहाना रियाज बोल रही हूं।
फरहाना, कहाँ से बोल रही हैं आप?
हम मुरादनगर गाजियाबाद से बोल रहे हैं
जी। बताएं फरहाना, क्या सोचती हैं इस विषय पर आप?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर दावा करते हैं कि वो ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक चीज जिसके साथ वो दावे कैसे कह सकते हैं और उनके दावे को झुठला नहीं सकता है कि वो लोकतांत्रिक भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और पीएम मोदी ने अगर मन की बात प्रोग्राम के जरिए भी सिर्फ एक तरफा संवाद किया है, लेकिन उसमें किसी भी सवाल को शामिल नहीं किया है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का मोदी जी हमेशा मजाक उड़ाते थे मनमोहन कहकर, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कतराते नहीं थे। मोदी जी जो विकास के इतने दावे करते हैं, उनको तो ये चाहिए था कि इस देश में इतने सारे चैनल, वेब पोर्टल जो भी हैं, उन सबको बुलाकर अपना 56 इंच का सीना ठोककर कहना चाहिए था कि आप सवाल करिए और मैं आपके सवालों के जवाब देने को तैयार हूँ। लोकतंत्र में राजनेता और जनता के बीच संवाद का माध्यम मीडिया ही होता है, और मीडिया ही होता है जो जनता के सवाल जो राजनेता तक पहुंचाता है। लेकिन मोदी जी ने सदियों पुरानी इस परंपरा को नहीं निभाया है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही गलत संदेश है।
फरहाना, हमारी श्रोता लोकतंत्र के लिए गलत संदेश देखती हैं मोदी जी के इस रवैये में। आता हूँ दुआ साहब आपके पास, एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। अगले कॉलर कौन है हमारे साथ?
जी, मैं मुरारी शाह किशनगंज बिहार से बोल रहा हूँ।
मुरारी जी किशनगंज बिहार से
जी,
बहुत स्वागत है, बताएं क्या सोचते हैं इस विषय पर आप?
जी, मैं तो कह रहा हूँ कि सर जो आप जो बता रहे थे कि ये जो पहले से जो परंपरा चलती आ रही है, तो ये मोदी जी उस परंपरा को हटकर काम करना चाहते हैं। और लोकतंत्र में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो परंपरा चलती आ रही हो वो चलती ही आवे, पहला। दूसरा है कि मोदी जी को हो सकता है कि गोल मटोल जवाब देने की आदत न हो, और तीसरा ये बात है कि आजकल का जो मीडिया का जो स्तर है वह बहुत निम्न स्तर का हो चुका है, जिसमें कुछ मीडिया बचे हुए हैं। और चौथा मेरी बात ये है कि मीडिया, जो मीडिया निर्भीक, बेवाक, तथ्यपूर्ण सवाल करते हैं, उनके जवाब देने के लिए वो अंदर से मजबूत नहीं है या जवाब देना नहीं चाहते हैं, ये कारण हो सकता है जो उन्होंने मीडिया के बीच आना ना चाहते हो।
मुरारी शाह हमारे श्रोता किशनगंज बिहार से, दुआ साहब मुरारी शाह और उससे पहले फरहाना, दोनों ने बड़ी पते की बात कही है। आपको लगता है कि मोदी जी बचने की कतराते हैं या सवालों से बचना चाहते हैं, जैसा कि ये मुरारी शाह कह रहे थे, और ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है, जैसा कि फरहाना कह रही थी?
फरहाना ठीक कह रही हैं, मुरारी जी भी ठीक कह रहे हैं, ये कतराते हैं। कतराते क्यों हैं? इसलिए नहीं कि पता नहीं है जवाब क्या है, कतराते हैं कि सवाल पूछने का अधिकार नहीं दे रहे वो। ये है मुश्किल, उनका जो एटीट्यूड है अखबार वालों से, मीडिया वालों से, कि मैं सवालों का इनके क्यों जवाब दूं, मैं तो जीत के आया हूं लोगों से। और लोगों के जो सवाल आते हैं, किसी भी वैसे भी सवाल आएंगे, उनका जवाब नहीं देंगे
तो हर नेता जीत कर आता है।
बाकी भी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट में भी बहुत कम अटेंड करते हैं, कहाँ नेहरू जी कितना अटेंड करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हर महीने एक कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, हमारे लिए वो एजुकेशन थी। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देते थे, अखबार में पढ़ते थे, हंसी मजाक भी होता था, नुक्ताचीनी भी होती थी, वो परवाह ही नहीं करते थे। ये सब कहते हैं कि किसी का हक नहीं है मुझे सवाल पूछने का, तो उसका मतलब यह है कि जवाबदेही का जो फर्ज है एक रूलर का इन ए डेमोक्रेसी, वो उसमें यकीन नहीं करते। और यही उनका रवैया पार्लियामेंट के साथ है, यही उनका कमेटियों से होगा, और यही बाकी जो इंस्टीट्यूशन है जितने भी सवाल पूछने के, उससे कतराते हैं। क्यों कतराते हैं ये नहीं कह पता, उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन वो जवाबदेही में यकीन नहीं करते,
एक सोची समझी रणनीति के तहत वो ऐसा करते हैं,
लेकिन उनको नुकसान भी हो रहा है। सोची समझिए, बिल्कुल फैसला है उनका, शुरू से नहीं किया, जो मेजॉरिटी में है तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसकी कमी नहीं है कॉन्फिडेंस। अगर डिमोनेटाइजेशन एक रात को 8 बजे कर सकते हैं, तो कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा है, मैं उसके मेरिट्स पे नहीं जा रहा, लेकिन उसमें यकीन ही नहीं है कि लोगों को मुझे जवाब देना है, अखबार को जवाब देना है, पार्लियामेंट में जवाब देना है, उन्हें यकीन नहीं है।
आप नफा नुकसान का जिक्र कर रहे थे, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे,
लेकिन उनको भी नुकसान है
जी, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। दुआ साहब, नरेंद्र मोदी से पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके ज़माने में ना तो सोशल मीडिया था, ट्विटर, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे नहीं, जबकि मोदी नमो ऐप है और ट्विटर पर, फेसबुक पर बहुत सक्रिय हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया ने प्रेस से रूबरू होने की उस ज़रूरत को ख़त्म कर दिया जो इससे पहले के प्रधानमंत्री फॉलो करते आए हैं, ये कहीं
नहीं,
उसका विकल्प तो नहीं खोज लिया इन्होंने?
सोशल मीडिया का सवाल नहीं है, मोदी जी को खुद भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी जो ट्विटर भेजते हैं या उनका दफ्तर भेजता है, वो भी एक तरफा है, उन लोगों के जवाब नहीं देंगे ट्विटर पर, ट्विटर पर भी नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वो, और करनी भी नहीं चाहिए, उसमें एक एक फिक्रे से कुछ थोड़ी बनते हैं कि सवालों के कई जवाब का विस्तार में जवाब देना होता है, वो नहीं करेंगे। सो वो यकीन ही नहीं करते कि जवाबदेही में, ये मुश्किल है, लेकिन उनको नुकसान हो रहा है इसके बारे में। आपकी ओपिनियन तो जा रही है मन की बात से, लोग क्या सोचते हैं फॉर और अगेंस्ट, आपको पता ही नहीं लोगों की ओपिनियन, तो गलत डिसीजन आप समझते हैं वो ठीक है, फर्ज करो गलत है, और कोई कहता है गलत है, अच्छा जो डेमोक्रेटिक रूलर होता है वो तो सवालों से देखता है कि ये पॉलिसी कैसे चल रही है। अगर लोग सवाल पूछ रहे हैं, फार्मर सवाल पूछ रहे हैं, दलित सवाल पूछ रहे हैं, या बेरोज़गार सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको पता लगता है कि ये प्रॉब्लम कितने गंभीर हैं लोगों के दिमाग में, तो आपके करेक्टरिस्टिक्स पहले आ जाएंगे।
आपने जो जिक्र किया उससे मिलता जुलता एक जवाब BBC हिंदी के फेसबुक पन्ने पर एक श्रोता ने दिया है, वो लिखते हैं, उनका नाम है विश्व रंजन जेना, लिखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी है या काम करना ज़रूरी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी करते क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो करते हैं। अगले कॉलर को हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी
हेलो
जी, कौन है हमारे साथ इस समय?
नमस्कार, मैं दुलम जग भोजपुर बिहार से नीतीश कुमार यादव बोल रहा हूँ।
भोजपुर बिहार से नीतीश जी, बहुत स्वागत है आपका
जी। दरअसल एक बात ध्यान देने वाली है
जी,
प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने जनता से जितना वादे किए थे वो भी वादे पूरे नहीं हुए, तो अगर वे सवाल पत्रकार जनता की तरफ से रखेंगे तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए इन सवालों का जवाब देने से बचने के लिए अभी तक इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस न किया है, न आगे भी करेंगे, और ये जो इनका रवैया है बिल्कुल तनाशाहों का है। और जहां तक एक श्रोता बंधु कह रहे थे कि काम करना जरूरी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी है, तो इनके पास हर महीने मन की बात, इसका तमाम टीवी चैनल्स पे इनका न्यूज चलता रहता है, बोलते रहते हैं, आज भी बोले हैं उड़ीसा में जाकर के, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आधे घंटे का समय नहीं दे सकते हैं क्या? तो ध्यान देने वाली बात है कि इनका जो रवैया है बिल्कुल एक तरफा है, और ये तनाशाह की मतलब नीति अपना रहे हैं, जनता के सवालों से बचना चाहते हैं या उनका जवाब नहीं देना चाहते हैं।
नीतीश यादव बिहार से हमारे श्रोता थे, एक श्रोता को कार्यक्रम में और शामिल कर लेते हैं, फिर दुआ साहब के पास आते हैं।
हेलो जी, हेलो नमस्कार सर।
जी नमस्ते,
गांव बेड़ा अपना तहसीलगुड़ा मलानी जिला बाड़मेर, आपका नियमित श्रोता हरीश बेड़ बोल रहा हूं सर।
हरीश बेड़ जी, आवाज में दिक्कत आ रही है, दोबारा आपको कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। दुआ साहब, कई जानकार ये कहते हैं, जो संचार के विशेषज्ञ कहलाते हैं, कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट्स कहलाते हैं, कि प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद की एक अलग शैली विकसित कर ली है, जनता से राबता कायम कर लिया है, जिसके बीच में उन्हें मीडिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो जो कुछ कहते हैं वो खुद ऐसा कहते हैं कि मीडिया में आता है और फिर मैग्नीफाई होकर वो जन जन तक पहुँचता है, तो उन्हें मुख्य धारा के मीडिया से इस तरह रूबरू होने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने अपनी एक शैली विकसित कर ली है, कुछ मीडिया के संचार के विशेषज्ञ ये कहते हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं?
नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जो मीडिया का रोल है डेमोक्रेसी में, बहुत ज़रूरी रोल है, वो एक चैनल है, उनको भी इनका फ़ायदा उठाते हैं, जब उनके विचार जाएंगे मीडिया में और जो सवाल आएंगे, कुछ क्रिटिकल होंगे, कोई तारीफ में भी होंगे, सारे कोई क्रिटिकल थोड़ी होते हैं सवाल, वो जो एक डायलॉग हो जाता है लोगों में और नेता में, और वो डायलॉग बड़ा ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए। उनको पता ही नहीं चलता कि लोगों के दिमाग में क्या है, लोगों की क्या प्रॉब्लम है, वो भी सुबह अखबार क्या पढ़ते नहीं है, अगर वो इतना समझते हैं कि अखबार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इरेलीवेंट है उनके लिए, ज़रूरी नहीं है, तो अखबार पढ़ते क्यों हैं? क्या वो टीवी नहीं देखते? वो काफ़ी समय तो ट्विटर भी देखते होंगे, लगता है जैसे भेजते हैं ट्विटर अपना भेजते हैं, लेकिन वो सारा एक तरफा, वो डायलॉग नहीं है लोगों में और नेता में, वो एक तरफा प्रचार है।
दुआ साहब, आप तो दो दो प्रधानमंत्रियों के प्रेस सलाहकार रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और उससे पहले HD देवेगौड़ा, उनके प्रधानमंत्री रहते, आप प्रेस सलाहकार की भूमिका में रहे, आपको क्या लगता है कि ये जो रवैया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मीडिया से रूबरू ना होने का, इससे उन्हें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है?
उससे मोदी जी को नुकसान ज़्यादा हो रहा है, लोगों ने जो ओपिनियन बनानी है, वो जो अपना एक एक मत बनाते हैं किसी विषय पर, वो जो उनका एक्सपीरियंस सरकार से है, कलेक्टर की तरफ से है, चीफ मिनिस्टर की तरफ से है, MLA की तरफ से है, MP की तरफ से, उनके साथ उन वो जो काम करते हैं, जो काम नहीं होता उससे व्यू बन जाता है, लेकिन देश के नेता होने पर जब आप कहते हैं सारा देश मेरे साथ है, और वाकई उनके पास मेजॉरिटी है देश, लेकिन जब तक आप उनको बात नहीं सुनेंगे तो रिश्ता कमज़ोर हो जाता है नेता में और लोगों में।
और जो सोशल मीडिया के जरिए उनको संवाद हो रहा है, क्या वो फीडबैक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए?
देखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल दोनों तरफ से बहुत गलत किया जा सकता है, क्या प्रोपेगेंडा है, क्या ट्रोलिंग है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो लोगों की आवाज़ से क्यों कतराते हैं, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं घबराया वो लोगों की ओपिनियन से, तभी मुश्किलें थी काफ़ी, सारी मुश्किलें तो हल नहीं कर पाए वो अपने 17 साल में, बाकी प्रधानमंत्रियों के सामने कितनी मुश्किलें थी, लेकिन वो इतना खुश होते थे कॉन्फ्रेंस में, हंसी का मजाक का। तो जब हम अभी जर्नलिज्म में भी नहीं आए थे, तब भी एक एक लफ्ज़ पढ़ते थे उनका, वो चीफ मिनिस्टर को लेटर हर महीने एक दे लेते, कोई किसी भी पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो एक लेटर ज़रूर लिख देना है, उनको एजुकेट करना और उनके सवालों के जवाब देना बहुत ज़रूरी था उनके लिए।
मेरी कई जानकारों से
आपकी मेजॉरिटी तो आ गई है
जी,
लेकिन एक तरफा मेजॉरिटी कभी नहीं चलती नेता और
जब दुआ साहब। इस कार्यक्रम से पहले मैं कुछ और पत्रकारों से बात कर रहा था तो वो ये कह रहे थे कि गुजरात दंगों के बाद प्रेस ने जिस तरह से मोदी जी को हैंडल किया या जो उनकी छवि पेश किया उस समय जिस तरह के वाकये हुए इंटरव्यूज़ के दौरान या जो भी जिस तरह की छवि गढ़ी गई वो उससे उबर नहीं पाए हैं और वो अभी तक इस वजह से प्रेस से रूबरू नहीं होते और वो इसी वजह से खुल के सामने नहीं आना चाहते।
देखिए गुजरात का तो एक मसला है और कहना उन सवालों का जवाब नहीं दिया तो ये भी उनके हित में नहीं है, उन सवालों का जवाब दे दीजिए, मेजॉरिटी है आपकी, आपको कोई हटा नहीं रहा था सरकार में, फिर भी जवाब नहीं दिए, अपना अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है नज़रिया जो है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए और भी पहुंचाना चाहिए, और अगर आप लोगों के दिमाग में सवाल हैं उन सवालों का जवाब नहीं देंगे तो उनके जो भ्रम हैं जो डाउट्स हैं वो कन्फर्म हो जाते हैं, वो ठीक नहीं है, तब तो आपको और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए अगर आपकी स्टेट में हो जाए, और देश बहुत बड़ा है, सवाल भी बहुत बड़े हैं।
दुआ साहब आपको लगता है कि विश्व राजनीति में इस तरह का कोई दूसरा राजनेता हुआ है जो मोदी जी के इस रवैये से मेल खाता है, जिसने प्रेस से इस तरह दूरी बनाई हो? इस सवाल पर हम आते हैं आपके पास, उससे पहले कुछ श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन है हमारे साथ इस समय? नहीं, संपर्क नहीं हो पाया।
हेलो
जी, कौन कौन बोल रहे हैं?
जी मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ, जनपद सहारनपुर से।
सहारनपुर से वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, रखें अपनी बात।
जी जी, मोदी साहब से पहले 10 साल पीएम मनमोहन का शासन था
जी,
और बीबीसी वालों के पास 10 साल में 10 भी मुद्दे मनमोहन के खिलाफ नहीं बन पाए। बीबीसी वालों ने मोदी के हर शनिवार को मुद्दा पीएम मोदी का जरूर लेना है। मोदी साहब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, देश के लिए ऊर्जा खपा रहे हैं। बीबीसी वालों को सबसे ज्यादा आपत्ति है मोदी साहब से। मीडिया ऐसी इंडस्ट्री है जो लाइट युक्त धुआं उगलती है, क्या मोदी के अलावा बीबीसी के पास कोई खबर नहीं है, कोई समाचार नहीं है? क्यों आप इसके पूर्वाग्रह, आपकी मानसिकता पूर्वाग्रह से बनी है इसके।
शुक्रिया विजेंद्र जी अपनी बात रखने के लिए। दुआ साहब, क्या ये सवाल उठाना वाजिब नहीं है? जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो सवाल भी मोदी जी से किया जाएगा, चर्चा भी उन्हीं की होगी। आप मुस्कुरा रहे हैं आखिर जवाबदेही किसकी बनती है?
जवाबदेही प्रधानमंत्री की है। प्रधानमंत्री को लोगों के सवाल, वो सवाल भी हो सकते हैं जो अखबार में रिपोर्ट नहीं होंगे या टेलीविज़न पर नहीं आए होंगे, लोगों के इतने सवाल हैं। मैं तो कहता हूँ कि हमारी 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, 1 अरब 30 करोड़ सवाल है लोगों के पास, जितने भी जवाब दे सकते हैं वो सरकार को देने चाहिए, और जो ज़रूरी सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, उनका प्रधानमंत्री को खुद देने चाहिए, जो पॉलिसी क्वेश्चन है, और उनका सवाल का जवाब जब पहुँचेगा तो उनका फ़ायदा प्रधानमंत्री को होता है। और अगर लोग सवाल अपने दिल में ही रखेंगे और आवाज़ नहीं पहुंचेगी प्रधानमंत्री तक, कैसे पता उनको लगा कि लोगों के दिल में क्या है, पॉलिसी डिसीजन लिए जा रहे हैं, गलत लिए जा रहे हैं, ठीक ले रहे हैं, कि कैसे पता उनको? जो अफसर बताएंगे वो तो बात वही मान जाएंगे।
और ये जो विजेंद्र जी कह रहे थे, हमारे सहारनपुर वाले श्रोता की मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे थे, मनमोहन सिंह तो भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे
बल्कि बाहर जाते थे, प्रेस पार्टी साथ ले जाते थे, और जब टॉक्स खत्म होती वही प्रेस कॉन्फ्रेंस देते थे, और फिर जब जर्नी खत्म होने वाला था, सफ़र ख़त्म होने वाला था, दिल्ली पहुंचने से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, और उस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो छप जाती थी, उसके बाद फिर सवालों के जवाब होते थे, पहुँचने पर वो हवाई अड्डे पर फिर बोल देते थे। सो हालांकि उनके कहा जाता था कि मौन है, बिल्कुल वो मौन नहीं थे इतने हर, और ये तो प्रेस पार्टी भी नहीं ले जाते, चलिए नहीं ले जाते कोई बात नहीं, अखबार वाले फिर भी पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े अखबार वाले पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको मिलते नहीं हैं, वो स्पोक्समैन के थ्रू मिलेंगे, लेकिन जो कई सवाल होते हैं वो खुद दे सकते हैं, और उन्हीं का नुकसान हो रहा है। لوگ کیا فیل کرتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، کیا ان کی مشکلیں ہیں، وہ اخباریں پہنچ جاتی ہیں. اور جب بھی کوئی کرٹیکل بھی ہو تب تو اور بھی ضروری ہے کہ اس بات پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، نکتہ چینی ہو رہی ہے، اور بھی ضروری ہے اس کو، تاکہ اگلے ڈسیشن میں وہ چیزیں نہ آئیں جو پہلے میں غلط لے گئی ہیں. تو اس کا فائدہ، ڈیموکریسی کا فائدہ رولر کو زیادہ ہے. اور ڈیموکریسی کو ڈینائی کریں گے آپ، ان لوگوں کا حق جاننے کا ہے، رائٹ ٹو نو از ویری ویری امپورٹنٹ،
فنڈامنٹل رائٹ،
فنڈامنٹل رائٹ ہے.
دوازم، میں پرانے سوال پہ آ رہا ہوں، آپ کو کوئی اور وشو راجنیتی میں کوئی ایسا دوسرا نیتا نظر آتا ہے، اتیت کے پنے پلٹے ہیں آپ تو، جو مودی جی کی شخصیت سے اس معاملے میں میل کھاتا ہو؟
ڈیموکریٹک کنٹری میں کوئی بھی نیتا لوگوں سے دور نہیں رہ سکتا، ڈیموکریٹک کنٹری میں. اب نارتھ کوریا لیجیے یا پرانا سوویت یونین لیجیے یا رشیا لے لیجیے، پریس کانفرنس کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہاں پر جو ووٹ بھی ہوتا ہے 95% گورنمنٹ کے لیے چلا جائے گا جو بھی رولر ہے. افریقہ کے کئی کنٹریز یا نہیں کرتے سالوں سال. لیکن ہماری جو آزادی ملی ہے، رائٹ ٹو نو ملا ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہمارے، یہ 100 سال کی آزادی کی لڑائی کے بعد ہے. جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ڈیموکریٹک ہے، اٹ وڈ وی دا پیپل اون دس کنٹری اینڈ دا کانسٹیٹیوشن از مینٹ فار وی دا پیپل. تو اس کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اور اگر ہم کو جانکاری نہیں ہے تو اپنے حق کا استعمال کیسے کریں گے
اگلے؟
اور اس حق کو مودی جی کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، شاید ان کو اس کی فالوئنگ اور زیادہ بڑھ جائے گی.
ابھی 2.5-3 مہینے کا وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں کوئی پریس کانفرنس وہ کریں، سوالوں کے جواب دیں. اگلے شروتا کے پاس چلتے ہیں فی الحال. جی
ہلو.
جی
نمسکار. جی
نمستے، کون بول رہے ہیں؟
میں جی شمشاد خان گوڑیا بول رہا ہوں دبئی سے.
خان صاحب دبئی سے رکھیں اپنی بات، بہت سواگت ہے آپ کا.
ہاں جی دھنیواد. سب سے پہلے تو سونی جی میں آپ کو، دوار صاحب کو، بی بی سی کے سبھی شروتاؤں کو اور بی بی سی پریوار کو نئے سال کی شبھکامنا دیتا ہوں.
آپ کو بھی بہت بہت مبارک.
اور میرا ماننا ہے کہ مودی جی کا ون مین شو پہ زیادہ وشواس ہے. اپنے گجرات مکھیہ منتری کال سے ہی وہ لوگ جواب دینا نہیں چاہتے ہیں کسی بھی بات کا. اور جو پریس کانفرنس ہے، میں میری نظر میں اس کو یہ چھوٹا پارلیمنٹ یا جنتا کی آواز مانتا ہوں. تو جنتا کو جواب دینا ایک سنویدھانک اور دیش کے سیوک یا پردھان منتری کا ان کا دائتو بنتا ہے. لیکن ان کا پریس کانفرنس نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. بس شکر ہو. تو میرا ماننا ہے کہ جواب دہی وہی کر سکتا ہے جو بالکل صحیح صحیح کام جو ہو رہا ہے. لیکن اگر صحیح کرتا ہے تو بھی پھر دنیا کو بتانا، اپنے دیش کو بتانا، اپنی جنتا کے سمکھ جو کچھ نفع نقصان وہ سب بتانا ایک ذمہ دار آدمی کا، کسی بھی پد پہ، کسی بھی کمپنی میں، کسی بھی گھر میں ایک ذمہ داری کا جواب دینا ضروری ہے. تو پریس کانفرنس تو آج تک دیش آزاد ہونے کے بعد جتنے پردھان منتری بنے ہیں جب انہوں نے کی ہے، تو کیا ان کے لیے نیا رول ہے کہ وہ ایک ابھی تھوڑے اندھ بھگت بول رہے تھے ان کے بھگت کہ وہ کام ہی کرتے تو کام کرتے، کام کا لیکھا جوکھا دے دو. اور ریڈیو میں تو من کی بات ہوتی ہے، من کی بات میں تو ایک طرفہ سنواد ہے. ایک طرفہ سنواد میں کیا معلوم چلے گا کہ سامنے سے کیا جواب آ رہا ہے، کیا کون کیا پوچھ رہا ہے. من میں تو ابھی ہم دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں. اگر
بہت شکریہ خان صاحب، بہت شکریہ خان صاحب. گھڑی کی سوئیاں اجازت نہیں دے رہی ہمیں. دعا صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. کسی بھی لوکتانترک ملک کا پردھان منتری جو جنتا کا نمائندہ ہے، وہ یدی پریس سے دوری بناتا ہے، سوچے سمجھے طریقے سے روبرو نہیں ہوتا ہے، آمنے سامنے سوالوں کے جواب نہیں دیتا ہے، لوکتنتر کے حساب سے اس کا سب سے بڑا خطرہ اور خامیازہ آپ کو کیا لگتا ہے؟
سب سے بڑا خطرہ ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو ہے. ڈیموکریسی میں ایک کنٹینیوئنگ ڈائیلاگ ہونا چاہیے رولر کا اور لوگوں کا، وہ نہیں ہو رہا. ایک طرفہ ڈائلاگ ہے، دوسری سائڈ کی نہیں جا رہی. اور اس لیے کئی ڈیسیشن غلط بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوں گے، کافی ڈیسیشن غلط ہو جائے. تو پریس کانفرنس میں جو سوال کیے جاتے ہیں وہ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں. فری پریس میں لوگوں کے سوال ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی غلط کوشچن ہو، آپ ان کو کہیے یہ غلط ہے. لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو لوگوں کی ایجوکیشن بھی نہیں ہوگی، اور جس کو پریس کانفرنس دینی ہے ان کی بھی ایجوکیشن نہیں ہوگی.
دعا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ سبھی شروتاؤں کا، اور معافی ہمیشہ کی طرح ان شروتاؤں سے جنہیں ہم آج کاریکرم میں شامل نہیں کر سکے. اگلے ہفتے پھر ایک نئے وشے کے ساتھ چرچا کے لیے حاضر ہوں گے. تب تک سندیپ سونی کو پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت.